हमारे बीच आदरणीय रामनाथ भाई जी पहुंच चुके हैं। हम सभी मिलकर भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई जी वैसे तो धार्मिक विंग के हेड कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही साथ मधुबन यज्ञ भूमि की सेवाओं में आदि रत्नों में से एक है। सबसे खास बात अगर मैं कहूँ तो हम जो रोज यहाँ टोली खाते हैं तो टोली डिपार्टमेंट के भाई जी जो है टोली डिपार्टमेंट संभालते हैं। आज हम सबके बीच भाई जी पधारे हुए हैं तो हम सभी आज व्यवहारिक कला के बारे में सुनेंगे। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। सभी ने खाना खाया? सोच के बताओ खाना खाया? फेल हो गए। आज बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे क्या करो, बॉडी से शरीर से डिटैच हो जाओ। तो आत्मा शरीर खाती है कि शरीर खाता है? आत्मा खाना खाती है कि शरीर? आत्मा ने शरीर को खाना खिलाया। ये अगर आपको याद है तो आप आत्म अभिमानी हो, नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर, शरीर की स्मृति रहती है। अभी आप तो भट्टी करने हैं ना, तो कम से कम यहां और तो कुछ काम ही नहीं है, तो भट्टी किसकी? शरीर की। शरीर की भी लगाते हैं, कपड़े सफेद करने के लिए कपड़े की लगाते हैं, तो शरीर के नहीं आत्मा की। जिसकी भट्टी करने उसकी स्मृति चाहिए ना, तो इसके लिए आत्मा, मैं आत्मा, मैंने इस शरीर को खाना खिलाया, मैंने खाया खाना खाया, तो ये क्या हो गया? शरीर का भान अभी भी है आत्म अभिमानी ने। तो आप परिवर्तन किसका करना है, शरीर का कि आत्मा का? इसके लिए ब्राह्मण जीवन में ज्ञान मिलने के बाद हमारे पुरुषार्थ का कुछ लक्ष्य चाहिए। ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान नहीं था तो बहुत मेहनत करते थे, प्राप्ति नहीं होती थी, पता नहीं था कुछ। अभी यथार्थ ज्ञान मिल गया, समझ में आया, समझने के बाद बाबा ने कहा बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो तीन प्रकार की प्राप्ति चाहिए, लक्ष्य पुरुषार्थ का लक्ष्य है, हमें तीन प्रकार की प्राप्ति होनी चाहिए। एक बाबा ने आज भी कहा, परसों रविवार को भी कहा, बच्चे बहुत जन्मों का कर्मों का बोझ है, वो बोझ और किसी भी प्रकार से आप उतार नहीं सकते हो, इस एक ही याद के बल से। और कोई तरीका है? तो क्या प्रूफ मेरे अंदर कर्मों का बोझ है? स्वप्न बताते हैं। जब आप रात को सोते हो, ये पांच विकारों के स्वप्न कहां से आए? आंखें बंद है, न सुनते हो न देखते हो। स्वप्न बताता है आप किस प्रकार के आत्मा हो, किस ग्रेड की आत्मा हो, है ना। स्वप्न आने के तरीके हैं, क्या क्या, किस किस प्रकार के आते हैं, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। फिर मन बताता है, मन में विचार किस प्रकार के उत्पन्न होते हैं, मन चंचल है, मन में विचार कहां से आ रहे हैं। फिर कर्म भी बताते हैं, अचानक बीमारी, हर कदम में समस्या, विघ्न, ये क्यों, ये मेरे कर्म है। ये सब बताता है कि मेरे पर कर्मों का बहुत जन्मों का बोझ है और उसका कोई तरीका नहीं है, या भोग लो या योग बल से मिटाओ, है ना। एक ही तरीका है ना बाबा ने, एक ही याद का बल। तो वो लक्ष्य चाहिए पुरुषार्थ करते समय। क्यों कर रहे हो आप, हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो, किस प्रकार के ऑपरेशन करना चाहते हो, दवाई लेना चाहते हो, यहां भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहते क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ एक, मेरे अनेक जन्मों का बोझ है, जब तक वो उतरा नहीं, कैसे पता चलेगा वो? वो भी पता चलेगा जिस दिन आप कहेंगे, आपको अपने आप को पता चलेगा। एक मिनिमम बाबा ने कहा एक महीना, मैक्सिमम छह महीने तक एक भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उस दिन आप कह सकते हो मैं कर्मातीत फरिश्ता संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। जो बाबा चाहता है बाप समान बनना है, है ना, ऐसे नहीं मैं फरिश्ता हूं बाप समान अपने बनेगा। लक्ष्य चाहिए। बच्चा स्कूल में जाता है उसका लक्ष्य है मुझे डिस्टिंक्शन लेना है, 100 मार्क्स लेने हैं। टीवी नहीं देखता है, खेलने नहीं देता जाता है, खाना खाने भी माताजी बुलाओ वहां आता है, पढ़ने का लक्ष्य है। यहां भी हमारा लक्ष्य है, ये भी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। तो एक लक्ष्य चाहिए कि हमें पुराने हिसाब किताब, बहुत आत्माओं से हिसाब किताब है, वो चुप तो करने हैं। एक दूसरा कि वर्तमान मेरे से दोबारा कोई हिसाब किताब न बन जाए। एक पहले का मिटाना है, दोबारा एक का 100 गुना का, दोबारा मेरे से इस संगम पर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, प्राप्त करने का समय है ये। इस समय किसी न किसी प्रकार से, कोई तन से मन से धन से, न चाहते मन में संकल्प आया औरों के प्रति, सब होगा, हिसाब किताब सब आएंगे, परीक्षाएं सब होंगी, तो भी मेरे से दोबारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। है ना, हम आए इधर किसके लिए, हिसाब किताब बनाने आए कि मिटाने आए, है ना, कर्म भोग मिटाने आए हैं। कर्मों का जो हिसाब किताब है वो मिटाने के लिए, कोई बनाने नहीं है। हाँ, ये भाई गुस्सा करेगा वो करेगा, उसका अपना काम है, उसका अपना लक्ष्य है। मैंने जो किया वो मेरा हिसाब किताब, आज जो कर रहा हूं, इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान संगम पर 2 काम चलते हैं। क्यों सा ये, एक शूटिंग भी हो रहा है और एक परिवर्तन भी हो रहा है। संगम पर 5000 साल के लिए अब शूटिंग हो रहा है, हर सेकंड संगम पर जो जो करते हो इसका आधार, कल बाबा ने कहा था 5000 साल का प्रारब्ध है, थोड़े समय के लिए नहीं, संगम पर शूटिंग हो रहा हर कर्म, क्योंकि ज्ञान मिला, समझ मिला और परिवर्तन भी हो रहा है। ज्ञान और योग की शक्ति है। रोज मुरली सुनते हो, सुनी कोई फायदा नहीं, सुनने के बाद एक मुरली के पॉइंट आपके पास चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिगैर गति सदगति नहीं है। गति माना दुर्गति माना, जानते हुए भी न चाहते हुए गलत काम होता है। कभी हम कहते गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता था लेकिन हो गया, न चाहते हुए भी, क्यों, ज्ञान होते हुए भी योग की शक्ति नहीं है, ज्ञान स्मृति में नहीं। तब बाबा ने आज मुरली में कहा एक स्मृति का स्विच ऑन रखो, कौन सा है वो, तो क्या होगा, हाँ, कौन सा स्मृति, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये स्मृति रहे। अगर ये सर्वशक्तिवान की स्मृति है, परिस्थिति आएंगी मूड ऑफ करने की, है ना, परिस्थितियां बहुत आएंगी, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ होगा, नहीं, मैं कौन, ये स्मृति अगर है, तब बाबा कहता है ज्ञान स्मृति में चाहिए वर्तमान, तो ज्ञान के बिगैर गति सदगति नहीं, ज्ञान उपयोग करने के लिए। तो अगर ज्ञान का उपयोग करते हो, परिस्थिति आएंगी, समस्या आएंगी, सामने वाला बोलेगा, हिसाब किताब लेगा, बहुत जन्मों का हिसाब किताब है, बहुत जन्मों से चुक्त करके जाना है ना, कि ले जाएंगे थोड़ा बाद में करेंगे, सूक्ष्मतन से परमधाम से करेंगे, नहीं, जो कुछ कहे पुराना हिसाब किताब इसी साल में, है ना, संगम पर ही अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना, कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं, यहां ही क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करते समय या योग बल से करो, या कुछ बोल के कुछ कर्म करके करो, दोनों शूटिंग हो रहा है। अगर कुछ कहते हो, हां वो बोलेगा, उसने किया, जो आपने क्या किया वो आपका 5000 साल के लिए रिकॉर्डिंग हो गया। इसको कहा कर्मों की गुह्य गति। कर्म करते समय पता नहीं चलता है, कर्मों की बहुत गुह्य गति है, बहुत सूक्ष्म है। तो वो बाबा कहता है संगम पर अभी, क्योंकि अभी ज्ञान है और सर्वशक्तिवान बाबा है, रोज देता है। ऐसे नहीं एक बार पढ़ा था पता ही नहीं भूल गया, बचपन में पढ़ा था, ऐसे नहीं, रोज रोज अलग अलग तरीके से, रोज रोज बच्चों को बूस्ट करता है, रोज रोज प्रेरणा देता है, रोज रोज सावधान करता है कई बच्चे भूल ना जाए। तो बाबा कहता मेरी जिम्मेवारी है संगम पर, मैं अपना काम पूरा करता हूं। तो बच्चों को रोज पढ़ाता है, कल कोई नहीं कि हमको पता ही नहीं, कल बताया, आज बताया, एक साल पहले बताया, दो महीने पहले बताया, रोज पढ़ाता है, नए नए ढंग से पढ़ाता है। तो पढ़ाई चाहिए, ज्ञान चाहिए, अगर ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करने के लिए फिर शक्ति चाहिए। आप कहेंगे मुरली सुनते हैं याद ही नहीं रहता है, स्वच्छ बुद्धि भी चाहिए। अगर बुद्धि स्वच्छ है तो जो सुनते हो वो याद रहता है, नहीं तो ज्ञान सुना याद ही नहीं तो क्या करेंगे, जैसे कल करते थे ऐसे आज भी कर रहे हो। कल और आज में अंतर क्या है, शूद्र जीवन और ब्राह्मण जीवन में कोई अंतर है? कल भी थे खाना खाते थे आज भी खा रहे हो, अंतर क्या हो गया? तो कैसे कहते हो ब्राह्मण है, किसको कहेंगे? तो इसके लिए वर्तमान ये जानना चाहिए कि मेरे से दोबारा कोई कर्म ना हो। तीसरा फिर अभी ऐसे कर्म करना चाहिए जो भविष्य 21 जन्मों का भाग्य बनाना है। बाबा ने तो गारंटी दी 21 जन्म, नहीं तो सारे कल्प के लिए ऐसे कर्म करना है, नहीं तो जाने के बाद क्या बनेंगे, आज का दास दासी बनेंगे, इधर से जाएंगे तो क्या बनेंगे कल, जन्म तो लेना ही है, आना ही है, तो क्या बन के आएंगे, कैसा जन्म चाहिए, वो भी उसका भी आधार संगम पर है। भविष्य जो पद है जो चाहते हो, इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा पुरुषार्थ चाहिए। हम बोलते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो उसकी विधि ढूंढना है। फिर बच्चा फर्स्ट क्लास आना है, इस सब्जेक्ट में कमजोर है ट्यूशन लेता है, इस सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ाई करता है ना, उसको पता है किस मेरा सब्जेक्ट ये है, मुझे इन सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, 100 मार्क्स लेना है, ये भी पढ़ाई है। आप जानते हो कि मेरा जीवन का लक्ष्य ये है, पुरुषार्थ का लक्ष्य ये है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसका भी लक्षण भी चाहिए ना, लक्ष्य रखा लक्षण ही नहीं है, तो वो लक्षण भी चाहिए। तो उसमें से थोड़े से लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जरूरी है, जैसे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो हमारा पुरुषार्थ में विघ्न है, उसके लिए कुछ उपाय चाहिए। समझ में आया? ज्ञान है, योग भी करते आप कहेंगे, सब कुछ है, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में संबंध संपर्क में कितना सहन करना पड़ता है, जैसे कितने समस्या आते हैं। देखो वर्तमान, पुराने तो योग हो गया, वर्तमान में हमारे से हिसाब किताब कैसे बनते हैं, परिवार में है, पति पत्नी दोनों है, एक ज्ञान में चलते हैं एक नहीं चलते हैं, दोनों चलते हैं, बाल बच्चे चलते हैं, सारा परिवार चलता है, कोई चलते नहीं कोई चलते हैं, ऑफिस में, घर में, बिजनेस में, हर जगह पर देख लो, घर में बच्चे कुछ कहते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, माता जी कहते टीवी नहीं देखो पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं, क्या करेंगे, एक दिन दो दिन बोलेंगे, किसी दिन गुस्सा तो आएगा ना, कुछ गलत शब्द तो निकलेगा ना, तो क्या हुआ, पुण्य हुआ क्या हुआ? पति माताजी को कुछ कहता ऐसा करो ऐसा करो, नहीं सुनते, एक दिन दो दिन, दोनों ज्ञान में भी चलते हैं। अभी ज्ञान में चलने वाले का बताता हूं, समझ इनका निवारण आप बताओ, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे सदा मुस्कुराते रहो। कल बाबा ने कहा बाप की एक, कल रविवार था ना, परसों कल बाबा ने एक बताया, अर्जी और मर्जी, बाप की एक मर्जी है, क्या है वो, सब आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनो, है ना, भगवान की मर्जी है। हम अर्जी डालते हैं बाबा ये बच्चे ऐसे करते हैं, हमारी गर्ल ऐसी करती है, ये ऐसे करते हैं, लेकिन उसकी भी मर्जी है ना, वो भी क्या कहता है, उसको भी सुनना पड़ेगा। उसने कहा हरेक आत्मा की पार्ट को जानते हुए, साक्षी होकर के जानते हुए, बहुत कुछ ज्ञान सुनते हो, मुख से गलत शब्द निकलना नहीं। चलो मन में भी ये ऐसा है, उसके प्रति भी मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, बद्दुआ ब्राह्मण हो बद्दुआ निकलने नहीं चाहिए, निकले निकलेगा, अगर किसको नुकसान, उनको कुछ नहीं, आपका ही सारे कल्प का प्रारब्ध से वंचित हो जाएंगे। अपना पहले सोचो, दूसरों का बाद में देखा जाएगा। बाबा कहते व्यर्थ नहीं सोचो, विकल्प नहीं, बोलना बाद में, गुस्सा बाद में आया, गुस्से से भी पहले। इन सब का निवारण कैसे आएगा? बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये होना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा? तो परिवार है, अकेले तो नहीं हो, बच्चे सुनते नहीं है, क्या करना चाहिए बताओ? गलत विचार नहीं, एक दफा दो दफा दस दफा सुना है, नहीं सुनते, पढ़ते नहीं, टीवी देखते रहते, खेलते रहते हैं, क्या करना चाहिए? गलत विचार नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, तो फिर चलेगा? तो ज्ञान सवेरे सुना और इधर क्या क्या देख लो, प्रैक्टिकल एक बताता, आज भी जीवित है, दोनों युगल है। माता जी गीता पाठशाला चलाती थी, बहुत अच्छी, दो लड़कियां है, हर साल माता जी मधुबन में आती है, लेकिन पति नहीं आता है। माता जी कहती नारायण तो ज्ञान में नहीं चलता है, सुनता ही नहीं है। हमने कहा लक्ष्मी कमाती नारायण खाएगा, आप चिंता क्यों करते हो नारायण की, लक्ष्मी तो कमाती नहीं, गीता पढ़ चला चलाती है, रोज क्लास करती है, योग करती है, हर साल मधुबन आती है। देखा एक दो साल के बाद कैंसर होके चली गई। फिर पता चला पति ने अपना मकान गांव में था बेचकर सेंटर के सामने मकान लिया और दोनों लड़कियों को समर्पित कराया। आज भी दोनों लड़कियां हैं। तो लक्ष्मी आगे गई कि नारायण गया? फिर पूछा मैंने क्यों, माता जी ज्ञान सुन के आती है, गुस्सा भी करते बच्चों से, बोलती भी है, तो ये ज्ञान में सुनकर के कुछ परिवर्तन नहीं है, तो मैं जाएगा तो क्या होगा? और माता जी को सेंटर में छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है, परिवर्तन कहां? किसी का भाग्य भी गवा देते हैं। हमारे आतप कहा व्यवहार परिवार के अंदर, अपने अंदर ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान सुना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी भी देख लो आप जितने इधर बैठे हो, बाबा के बच्चे हैं ना, नए तो कोई नहीं, शिविर वाले तो नहीं आए, देखने के लिए तो नहीं आए हो, पुराने सभी आए। आप में से एक भी बताओ आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हुआ, ऐसा कोई पुण्यात्मा है? हाँ है, कैसे नहीं होगा, है तो हाथ उठाओ देख लो, सभी को देखा, दर्शन करना पड़ेगा ना। जो समझते आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया बताओ, एक दो ही सत्युग में ताने, तीन तीन चार, धीरे धीरे उतारे। माता जी एक दिन भी नहीं किया, दूसरों ने आपके ऊपर किया, दूसरों ने किया, दूसरों ने आपके ऊपर किया, हाँ आपने नहीं किया पक्का, हाँ दर्शन कराना पड़ेगा ना, कौन कौन है, देखो सत्युग में कौन कौन जा रहे, सब देखना सत्युग में कौन कौन जाने वाले हैं, हाँ इतने ही बस, तीन ही, अरे तीन चार ही जाएंगे बाकी नहीं, तो ये कैसे होगा? तो तब कहा ज्ञान है, बहुत कुछ करते हो लेकिन ध्यान देना चाहिए। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहते हैं हम, तो पुरुषार्थ भी क्या करना चाहिए? एक वर्तमान, मेरे से कोई विकर्म होना नहीं चाहिए, इस पर बहुत ध्यान चाहिए। हाँ बच्चे नहीं सुनेंगे, बच्चे आपके कहां तक, हाँ एक बार समझाओ बच्चों को, टीवी दिखाने के लिए देखने के लिए किसने सिखाया था? हाँ है ना, आपने सिखाया था ना, बच्चे जन्मते ही टीवी देखना नहीं आए थे, बच्चे छोटे थे, माताजी गोदी में लेकर बैठती थी, हाँ सिखाया माताजी ने। अब बड़ा हो गया वो, अब पढ़ाई नहीं पढ़ता है, टीवी देखता, अभी उसको कहते नहीं पढ़ो, सिखाया था किसने, माता गुरु ने। अब वही गुरु अभी कहता है नहीं पढ़ो, ये कैसे होगा? सिखाया आपने है ना, तो अब हमें सहन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे विकर्म बनते हैं, बच्चों के कारण हम अपना पाप करते हैं। ज्ञान है, समझ है, आप कहेंगे अच्छा ही के लिए करते हो, हाँ एक दफा दो दफा तीन दफा समझाओ, उसके बाद तरीका है, वो जब टीवी देखता है उस समय कुछ नहीं बोलना, देखने दो, जब टीवी देखकर खाना खाने बैठता है तब उसको समझाओ, आप स्कूल में क्यों जाते हो, टीवी देखते बैठो, स्कूल में क्यों जाते हो, टीवी देखना है ना देखते रहो, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है तो टीवी कब देखेगा, पढ़ेगा कभी, आप उसको ही पूछो, समझाओ, समझ देनी है, समय समझ भी समय और परिस्थिति देख के देना है ना। जब वो टीवी देख रहा है उसके लिए वो खाना है, उस समय खींचेंगे आप तो क्या होगा, उसके बुद्धि इधर लगेंगी नहीं पढ़ाई में, देखने दो। अगर आप और भी कुछ करने तो कल के बाद कनेक्शन ही बंद करो, आपको भी त्याग करना है। अगर बच्चों के प्रति प्यार है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अपने को त्याग करना है। आप टीवी देखते रहो और उनको को बच्चों को नहीं पढ़ो न देखो, हो सकता है त्याग हमें भी करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा देने की तरीका चाहिए। परिवार में गुस्सा क्यों आ रहा है, गलत विचार चलते हैं। हाँ पति देखो माँ माताजी और युगल दोनों युगल ज्ञान में चलते थे, पति पत्नी किसी कारण पता नहीं अभी तो पति क्लास में आता ही नहीं है, माताजी रोज भोग लेके पति को देती है, उसके सामने फेंक देता है, एक दफा दो दफा लेके आए फेंक देता है, तो दिया ने तीसरी दफा ला करके टेबल पर रख दिया। चुपचाप माताजी किधर बाहर गई, उठा के खाया। माताजी ने देखा अरे मैंने दिया तो मेरे सामने फेंक देता है, और माताजी इधर उधर गई उठा के खाया। तो अभी आप बताओ, आपसे आप समझो क्या है, भगवान से नाराज है, भोग से नाराज है, किससे नाराज है? तब कहा ज्ञान में चलते समय दोनों चलते हो, हाँ वो अपने आचरण, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है, लक्ष्य अलग है, वो जो कहता है ऐसा नहीं करो वो सही कहता, उसके अनुसार आपको ठीक नहीं लगता है ना। तो आपको लगना चाहिए कि वो क्यों कह रहा, नहीं आपके अनुसार वो सही है, आप सही है, उसके अनुसार वो सही है, तो दोनों टकराते हैं। एक को झुकना पड़ता है, क्यों, किसको जानते हुए, मेरे हिसाब किताब न बने, मेरे कर्मों से, मेरे बोल से, मेरे मन में गलत विचार न चले। विचार भी चलता है तो भी मेरा समय चला गया, व्यर्थ कर्म बन जाता है, व्यर्थ जाता है, समय चला जाता है। तो उससे भी बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्मों की गति को जानते हुए अपने को सुधारना पड़ता है, अपने को मारना पड़ता है, अपने को झुकना पड़ता है, हर कदम कदम पर। हर एक कहेंगे क्यों, किसी के लिए नहीं करते आप, अपने लिए ही। बाबा के बाबा भी कहता है मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए झुकते हो, अपने लिए मोल्ड होते हो, अपने लिए हाँ जी करते हो, गलत कुछ भी हो हाँ जी आप ही सही है, हम ही गलत है, क्योंकि अगर कुछ बोले तो टकराएगा। भले दोनों ज्ञान में चलते या ज्ञानी अज्ञानी भी हो, अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी होता और ज्यादा, दोनों ज्ञान में चलने के बाद भी यही है मंजूर। तो क्या करना पड़ेगा, समय व्यर्थ जाता है। हाँ सदा झुकते चलो मुझे ही मरना है, नहीं उसके लिए भी है, समय परिस्थिति देख लो। हाँ अगर कुछ बताना है उस समय नहीं बताना, जब अच्छी तरह से हो गया आप उस समय झुके चुप रहे, फिर समय देख लो, जब अच्छी तरह से बात कर रहे थे कल आप ऐसे कह रहे थे, उस समय आप जो स्पष्टीकरण दे रहे हो उस समय वो सुनता है ना, तो कुछ समझ में आएगा, थोड़ा तो अंदर जाएगा। अगर उस समय कितना भी आप स्पष्टीकरण दे दो अंदर जाएगा नहीं, मैं ही सही हूं। हरेक का अहम भी होता है, मैं बड़ा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सही हूं। आप कितना भी गलत है तो उस समय समझाने जाओ अंदर जाएगा। इसको कहा सहन करने की और समाने की शक्ति चाहिए। परिवार में संगठन में ब्राह्मण बनने के बाद सहन करने की शक्ति कहां से आएगी, हर कदम पर सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। नहीं अगर आप सही बात बताने जाओ भी टकराएगा। कोई भी अपने को झुकना नहीं चाहता है, हर एक के अंदर कलयुग में और एक है अहम, मैं कम नहीं हूं। लेकिन उसका भी अपना लक्ष्य है ना, दोनों भाई एक होते हुए उसका लक्ष्य अलग है, इसका लक्ष्य अलग है, हर एक का लक्ष्य अलग है। तो ये समझ चाहिए, जिसने अपने जीवन में पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है मुझे ऐसे बनना है, उसको झुकना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है। इसके लिए कहा उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान सुनने से इतना नहीं, ज्ञान सुनने की तरीका चाहिए। कि रोज जब मुरली सुनते हो सारे मुरलियों से देख लो आप, जो एक मुरली के पॉइंट ले लो जो नया आज बाबा ने कभी नहीं सुनाया, आज सुनाया था, और आज ही मुझे वो धारण करना है, धारण करने योग्य ऐसा एक पॉइंट सिलेक्ट करो, लिख करके जेब में रखो और अपने आप को दो चार दफा पढ़ाओ सवेरे दिन में शाम को रात तक, एक ही पॉइंट दोनों चाहिए। और औरों को कोई भी मिला उनको भी दान करो, उनको भी समझाओ, ये औरों को कुछ दान करने से कुछ नहीं, आपका ही संस्कार बनता है, इसको कहते धारणा। धारणा ज्ञान की सुनने से नहीं होंगी, पढ़ने से नहीं होंगी, एक ही पॉइंट बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे, एक मुरली के पॉइंट, अपने आप को आज बाबा ने क्या कहा, ये मैं कैसे करूं, इसकी विधि क्या है, अपने आप से बात करते रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, क्या करते हो, जहां खड़े उधर खड़े होते, चुप खड़े हो जाते, मन चुप होता है, मन तो एक दफा चक्कर लगा के आता है ना। तो क्या करना चाहिए, बाबा की याद कहा, बाबा की याद क्या क्या याद करेंगे, जो बाबा ने कहा वो याद आना चाहिए, जो आज सवेरे माँ बाप ने जो मुझे काम दिया, बच्चे ये कर्म करके आओ मार्केट से, मैं भूल ही गया, क्या भूल गया, बाबा माँ बाप को भूल गया, नहीं, माँ बाप के बच्चे हो, भगवान के तो बच्चे हो, भगवान ने जो श्रीमत दी वो भूल गए, वो हर ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार अपने को पढ़ाओ, बार बार मेरी स्मृति जागृत रहे, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, ये स्मृति में, ये बाबा की याद। अगर ऐसे बार बार स्मृति में लाते हो, स्मृति समर्थ स्थिति बनाता है, स्मृति से समर्थी स्थिति हमारी समर्थ होगी, याद रहेगा, एक घंटा और एक घंटे तक हाँ स्मृति में है, याद है, ये करना चाहिए, फिर और एक घंटे के बाद कि कर्मों के प्रभाव में आते हैं, इसलिए बार बार हर घंटे में अगर ये भी करो तो भी रोज नए नए ले लो, एक ही नहीं, आज मुरली के पॉइंट अलग, कल अलग, ऐसे 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में धारण होंगे, तब वो ज्ञानित्व आत्मा है। कल बाबा ने ये कहा था, एक साल पहले ये कहा था, ये अस्त्र है, जब समस्या संसार में समस्या परिस्थिति आती है तब याद था बाबा ने दो दिन पहले क्या कहा था, एक महीने पहले क्या कहा था, बच्चे सहन कर लो, बाप बैठा है, बाबा देख लेगा, आप सहन करो, आप कुछ बोलो नहीं, याद आना चाहिए, तुरंत परिस्थिति आई, आएंगी परिस्थिति, नहीं ऐसे नहीं, तो बाबा ने जो अस्त्र दिया उस अस्त्र का उपयोग करना है, तो उपयोग करने के लिए स्मृति तो चाहिए ना, याद तो चाहिए ना, याद ही नहीं तो याद अपने आप नहीं बढ़ेंगी पढ़ने से, सिर्फ रोज कम से कम 10-15 दिन एक मुरली के पॉइंट आपकी इच्छा के अनुसार जेब में रख। तो समझ में आया कहां कहां सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, तो ये कहां से आएंगे शक्ति, अपने आप तो नहीं आएंगे ना, तो विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए। मेन दो ही चीज है, योग की शक्ति चाहिए। अगर ऐसे आप योग में बैठो, नींद भी आई, थोड़ी बाबा से ऐसे बात किया, भक्ति मार्ग में भी करते थे है ना, अभी भी कर रहे हो भक्ति मार्ग, अभी में कोई अंतर है, कोई नहीं, मूर्ति के सामने बैठे बात करते, बाबा मेरा ये दर्द है, ये बीमारी है, ये ठीक करो, ऐसा करो, ये रूढ़ियां कर रहे हो, भक्ति में क्या करते थे और अभी क्या करो, कोई अंतर है बताओ भाई जी, योग में बैठते क्या करते हो। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत सिंपल तरीके से बताया बाबा ने, लेकिन वो विधि पूर्वक न करने के कारण ये रिजल्ट है, आज शक्ति नहीं है, बहुत कुछ सुनते हैं। बाबा ने सहज भाषा में बताया कि बच्चे पहले अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, विदेही बनो। कैसे बनेंगे, कभी पूछा किसी को, पूछते हो टीचर को पूछते हो अशरीरी कैसे बने, आज बाबा ने कहा डिटैच बनो, सवेरे सुनाया आपने किया आज, हाँ कैसे करें डिटैच कैसे होंगे बताओ, हाँ मैं आत्मा हूं हो गया डिटैच, नहीं कैसे वो बताओ पूरा, क्या डिटैच होने के लिए आपने क्या किया, डिटैच का अर्थ क्या है, कितना मिनट, पांच मिनट, दस, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ का है ना। तो कम से कम दो नहीं, एक मन करता मैं आत्मा हूं, आत्मा का चिंतन करता हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु चमक, अरे आज उसको फोन करना था, एक और डिटेच हो गया तो कौन है, दो आत्मा तो नहीं है ना, एक ही है, तो ये कहां से आया फिर। हाँ, डिटैच होने के लिए फिर इधर जानना चाहिए, ये दोनों शक्ति काम करना चाहिए, एक ही नहीं, आत्मा का चिंतन इतना ही नहीं, बुद्धि भी चाहिए, नहीं तो बुद्धि और किधर ले जाती है, वो ये दुनिया वाला ज्ञान हो गया। ईश्वरी विश्वविद्यालय में बाबा ने आज का बुद्धि योग मेरे से जोड़ो, तो ये दोनों अंतर है। तो जब बैठते हो आत्मा का चिंतन करने की विधि, जब दुनिया में कहते आत्मा का चिंतन करो, यहां नहीं, यहां स्वरूप बनने की विधि है, मैं कौन पूछता है, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूं, मेरे पास क्या है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, संस्कार क्या करता है, मेरे रूप कौन सा है, मेरे गुण कौन से है, पूछो, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। ये दोनों अगर पांच मिनट, पांच प्रश्न है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, ये पांच प्रश्न अगर बुद्धि से बात करते हो, दोनों प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, इसी में अगर आप पांच मिनट रह गए, उसके बीच में और कोई भी विचार नहीं आए, उसका नाम है विदेही बन गए, अशरीरी बन गए, है ना, वे आत्म अभिमानी बन गए, क्योंकि शरीर, शरीरधारियों का कोई विचार नहीं आया, डिटैचमेंट, शरीर छोड़ तो नहीं देते हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर की स्मृति नहीं है, विचार नहीं है, वो कैसे होगा, कोई कुछ करना नहीं उसके लिए, पहाड़ पर चढ़ना, इधर ही बैठे रहो, सिर्फ विचार, मैं कौन, बात कर, सहज तरीका है, मैं कौन, बुद्धि बताती, हाँ उस दिन बाबा ने कहा था मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं पुण्य देव, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, आत्मा के अंदर क्या है, मन है, मन एक क्या कर रहा है, क्यों इधर उधर का विचार करता है, क्या करना चाहिए मन में, ये बुद्धि क्या करती है मेरी, कहां जा, कहां जुड़ी हुई है, संस्कार मेरे कौन से है, इसको क्या, स्व का दर्शन करो, अपने आप को देखो, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ये कैसे मिटाऊं मैं, फिर मेरा रूप कैसा है, जब परमधाम से आया था तो कैसा था, अभी कल जाना है कैसे जाना पड़ेगा, क्या क्या भरा हुआ है, फिर मेरे गुण कौन से है, अपने आप को पढ़िए, ये गुण याद रहना चाहिए, रोज याद दिलाओ, फिर मैं शरीर में बैठकर क्या करता हूं, पांचवा मैं आया कहां से, ये पांच दस मिनट उसी का चिंतन चलता है, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, इसके बीच में और कोई आया, कोई आने का मार्जिन है, अगर मन अकेला चलता है, बुद्धि खाली है, खाली बुद्धि है, उसको कोई ना कोई याद आएगा, तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि को पहले एक करो, एकाग्रता, ये दोनों में अंतर है, सिर्फ मन का चिंतन करते रहो, करते हैं, किताब भी लिख सकते हो आप आत्मा के ऊपर, लेकिन स्वरूप बनना उसी रूप में, इसलिए साइंस कहता है हाइड्रोजन 2% 1% ऑक्सीजन ले लो तुरंत पानी बन जाता है, दूध नहीं बनता है, यहां भी ये मन और बुद्धि दोनों मिलाओ तो अशरीरी बनते हो, विदेही बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो, समझा, तो ये पहले चाहिए, ये बनकर, अगर आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी, आप बात कर सकते हो, कर सकते हैं, मोबाइल आपके पास भी, मेरे पास भी, बात कर सकते हो, हाँ नंबर चाहिए ना, शिव बाबा तो आपका बाप है, आप इधर हो ऊपर है, आप उससे कैसे बात करते हो, आपका आवाज उधर कैसे जाएगा, दोनों बाप और बेटा है, कैसे बात करेंगे, अभी आपका बेटा उधर है इंदौर में, कैसे बात कर सकते हो, करो, नंबर चाहिए ना, तो शिव बाबा से कैसे बात करते हो, कौन सा नंबर है, हाँ तब का यही पांच नंबर, तब बाबा ने विधि बताया, बच्चे जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक आपका आवाज संकल्प मेरे तक नहीं पहुंचता है, न मेरा संकल्प आप ले सकते हो, समझ में, ये विधि भूलना नहीं, योग तो बहुत सारी दुनिया, विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध ने, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया, तपस्या करना इतना नहीं, विधि चाहिए, नंबर एक गलत हो तो आवाज आएगा, तो ये पांच नंबर याद रखना, जब भी योग करना बैठना बैठते हो पहले ना जब भी किसी से फोन लगाना चाहते हो दिन में 10 दफा लगाओ या 1 दफा लगाओ ये 5 नंबर डायल करना चाहिए पहले, तब आपका आवाज उधर जाएगा। जब अगर शिव बाबा से बात करना चाहते हो योग लगाना चाहते हो ये पहले कौन लगाना चाहता है, शरीर को परिवर्तन करना चाहते हो आत्मा को, आत्म हर सेकंड में माना शरीर की स्मृति में रहते हैं ना, तो शरीर की स्मृति से आत्म की स्मृति में आओ, आने के लिए उसको कहते हैं अपने को जागृत करो, समझा। जब बैठते ही ये नंबर डायल करना, उसके बाद जो बात करना करो आपका आवाज बाबा के पास जाएगा, समझ में। जब ऐसे अगर योग में बैठते हो उसको का एक रस, एक के साथ कनेक्शन जुड़ता है, एक के साथ संबंध है और इधर उधर नहीं जाता है। अगर आपने नंबर डायल किया एक्यूरेट तो वो आवाज तुम फोन इधर उधर जाएगा, जहां जाना चाहिए वहीं जाएगा, भटकेगा नहीं, है ना। तो ऐसे भी ये भी नंबर अगर आपने अशरीरी बनकर बैठे आपका आवाज वहां ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, समझ में आया। तब अगर ऐसे बैठते हो उसको कहा 10-15 मिनट बैठो, एक घंटे बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का शरीर तमो प्रधान हो गया, बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन विधि पूर्वक थोड़ा सा काल हो विधि पूर्वक हजम करो। बहुत खाया डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और बीमारी करेगा ना, एक घंटा बैठे पाव दर्द इधर उधर के विचार है, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, किसके लिए योग लगा रहे हो, अपने लिए, है ना। तो विधि पूर्वक थोड़ा सा करो, बहुत करने की जरूरत नहीं, किसको दिखाने के लिए तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बाय फोर्स इट इज बाय विल। हमारा आध्यात्मिक जीवन एक प्रेशर से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए हम कर रहे हैं, स्व इच्छा से चलने का रास्ता है, किसी को दिखाने के लिए किसी ने कहने से नहीं चल रहे आप, अपने इच्छा से चलने के लिए समझ से। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान चाहिए तो रोज एक मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में, उसको दुनिया में कहते दिल में दिलाराम को रखो। आपके पास दिल है नहीं है, है कहां है बताओ, हाँ आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार है, दिल कहां है बताओ, हाँ बुद्धि ही पता है, याद है बुद्धि का नाम ही दिल है ना, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार, तो बुद्धि का नाम ऐसे नहीं कहना कभी, सब हर टाइम कहते हैं बुद्धि दिल बाबा को दे दिया है, हाँ नहीं, अगर उस दिल में आज की मुरली के पॉइंट एक पॉइंट अगर आपको याद है उसको कहते हैं दिल में दिलाराम है। आपके दिल में कौन है, माता जी इधर बैठी है बहुत ध्यान से मुझे ही देख रही है, इधर देखते अरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, सो गए कि नहीं, माता जी के दिल में कौन है, है ना, देख रहे इधर, तन भी इधर है, देख भी रहे हो सुन भी रही है, लेकिन दिल कहां जुट गया, अरे 8-9 बज गए माँ बच्चे सोए कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, दिल में कौन है, बच्चे है ना। इसलिए दिल से तन इधर होते हुए भी बुद्धि भटकती है, तो वो बुद्धि को स्थिर करने के लिए आज बाबा ने कहा बुद्धि मेरे से लगाओ, तो उस बुद्धि में क्या होना चाहिए, आज बाबा ने क्या कहा बार बार स्मृति में, इसलिए बार बार अपने को पढ़ाओ, बार बार औरों को भी बताओ, देखो आज वो स्मृति जागृत रहे, औरों को भी बताओ बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, अपने आप अभ्यास नहीं होता, क्यों, बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है तो वो व्यर्थ विकल्प करती है, निर्णय नहीं ले सकती है। और संसार में चलते हुए बाबा कहता है किसी को दुख नहीं दे दो, आप देना नहीं चाहते हो, गुस्सा नहीं करो, नहीं करना चाहते हो, गलत बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन सामने वाला परिस्थिति ऐसे करता है, ऐसे उसके आचरण है, उसके ऐसे व्यवहार है, तो क्या करे, हिसाब किताब बना लो फिर से, है ना, फिर से वही जन्म चक्कर में आना है, ज्ञान समझते हुए भी। तब कहा दुनिया में बिजनेस में कोई पैसा लेता है देता ही नहीं है, क्या करे, लड़ाई झगड़ा करो, हाँ बाबा कहता है उन सब का सॉल्यूशन बाबा ने बताया, क्या सॉल्यूशन बताया, बहुत सारी समस्याओं के लिस्ट है, बिजनेस में, घर में, परिवार में, संबंध में, बच्चे सुनते नहीं, पति नहीं सुनता है, पड़ोसी वाले नहीं सुनते हैं, मकान वाला मकान में रहता है, भाड़ा नहीं देता है, बिजनेस वाला पैसा ले जाता है, सामान ले जाता है, देता नहीं समय पर, क्या करना चाहिए? इन सब का सॉल्यूशन बताओ, ये सबकी समस्या है ना, रोज है, इन सब का समाधान क्या है? कुछ तरीका है? कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, कि चुप रहेंगे? कब तक चुप रहे? वो पैसा देता ही नहीं है, क्या करना चाहिए? हाँ, सब जाना चाहे, आप ऐसे चलेगा, पैसा उसको दे दो, चुप चुप बाबा, आप थोड़ा चुप रहे बैठेगा, ये कहना सहज है? हाँ, हो सकता है। हाँ, और बताओ, ये कहना सब संसार में, आप सभी संसार में रहते हो, जंगल में तो नहीं रहते हम, है ना, ग्रस्त में रहते हो, तो आप बताओ, संसार में थे, पति माता जी कहते बच्चे सुनते नहीं है, पति सुनता ही नहीं है, रोज कुछ ना कुछ होता ही है, बच्चे नहीं सुनते, बिजनेस में तेरा मेरा होता ही है, कितनी समस्या है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? शुभावना पहुंचेंगी? आप देखो, अगर आपके बच्चे परिवार वाले आपका भाई सुनता ही नहीं है रोज, तो आप बैठ के क्या शुभावना देंगे? क्या शुभावना देंगे? इससे चलेगा? शुभावना कहने में सहज है, पहुंचता है शुभावना, करते हो ऐसा? हाँ, बोलते नहीं, चुप रहते हो? हाँ, बताओ, चुप रहते हो? शुभावना से पहुंचता है, सुनता है वो, परिवर्तन होता है? हाँ, हाँ कहते हैं, लेकिन होता है हर जगह पर, करते हो? हाँ, तब बाबा ने कहा, अगर संगम पर कुछ हिसाब किताब बनाना नहीं है, संगम पर ही सारे कल्प का भाग्य बनाना चाहते हो, तो एक ही अस्त्र है, एक ही विधि विधान है, एक ही शिक्षा है। क्या करना है? मुख से अगर बोल रहे हो, कोई सुनेगा? और चार सुनाएंगे, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो सही करता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताओ, यहां शांतिवन में उनके माँ बाप भाई बहन सब परिवार ज्ञान में चलते थे, कितना बचपन से जानता था मैं, बॉम्बे के है उस, और वो डॉक्टर है, पिताजी उसकी माताजी और वो दोनों भाई हर साल मिलके जाते थे, कम से कम अभी 10 साल से उनको देखा ही नहीं मैंने कभी भी। एक दिन मैं इधर से नीचे जा रहा था, रास्ते पर एक रंगीन कपड़े पहना हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, हमने कहा ये लगता है, गाड़ी रुका, हमने कहा आप कहां से आए हो? कि भाई साहब सॉरी। हमने कहा क्यों, आप कहां से आ रहे? मैं पूछ रहा आप कौन है, पूछता हूं, सॉरी कहने लगा। हमने कहा क्यों? मैं वही हूं। हमने कहा 10 साल हो गया, माँ बाप थे तब हर साल मिलता था, अभी भी माँ है, क्या हुआ? कहते मैं पर्सनली मिलता हूं। आया शांतिवन ने, उसने जमीन लिया, मकान बनाए, पैसे थे, डॉक्टर था, बहुत लोगों को दिया, एक व्यक्ति ने, बाबा के बच्चों ने उसको पैसा दिया नहीं, और दिया भी 400 रुपए का जमीन है, 200 रुपया दिया, 200 रुपया देता हूं क्या? बॉम्बे से रोज आता था जाता था, कोर्ट में गया, बहुत लोगों को बताया, बहुत कुछ किया, 10 साल रगड़ा उसको अच्छे तरह से, आया गया, ना नहीं करता, दूंगा। एक दिन उसको कहा कि आपको मैंने आपकी जितना पैसा देने लिया था, आपने 200 रुपये में जमीन लिया था, 200 रुपया दिया आपको, आप अपने भाई से प्रॉफिट खाना चाहते हो, अपने भाई से भी करते हो, आप दुनिया से कमाते हो, हम दोनों बाबा के बच्चे दोनों ज्ञान में चलते हैं, मुझे 400 रुपये मांगते हो 200 रुपया दिया आपको, और दूंगा नहीं, कोर्ट में गया, सब कुछ हुआ, तो लास्ट में बताया अभी क्या करो? हमने कहा तुम दिया तो भी वापस नहीं लेना बाबा के भंडारे में, और आज के बाद उसके पास जाना नहीं, हिसाब किताब कैसे बना? हमने कहा तुमको भगवान ने रोटी कपड़ा कुछ कमी दिया है? 200 रुपया के पीछे आपको अपना पैसा तो मिल गया ना कि नहीं मिला? कहता मिल गया, और अपने भाई से, अपने बीके भाई दोनों ज्ञान में चलते हैं, उनसे आप 400 रुपए से लेते हो, 200 रुपए में जमीन लिया आपने, 400 में बेचा, उसको पता था, वो भी वकील था, उसने 200 दिया, 200 नहीं दिया, मेरे से कैसे प्रॉफिट मांगते हो? भाई भाई कहते हो, एक बाबा के बच्चे कहते हो, बाबा के बच्चों को लूट रहे हो, तो भी समझ में नहीं आता है, उसके दृष्टि में वो सही है, इसके दृष्टि में ये सही है, लेकिन समझ कहां आएंगे? कौन समझाएगा? जब मिले तो समझाने आएंगे ना। तब मैंने उसको कहा, उसने जो किया सही किया, गलत नहीं किया, आपके पैसे आपने अपने भाई से एक्स्ट्रा पैसा लेते हो, और भाई कहते हो, एक बाबा के बच्चे कहते हो, ये समझ में नहीं आता है ना, ज्ञान में चलना, इतने 10 साल गवाया,
तो यहां भी कर्मों की गुह्य गति है, वो पैसा क्यों नहीं देता है। तब ये सब बाबा ने कहा, ये सब समझते हुए, इसके लिए समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, नहीं तो संगम पर ज्ञान सुनने के बाद भी हर सेकंड मेरे मन में औरों के प्रति व्यर्थ चलता, विकल्प चलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गलत शब्द बोलते हैं, लेन देन होता है, ज्ञान जानते हैं, वो ज्ञान अपने जगह पर लिख करके डायरी में रखा है, वो आचरण में नहीं आ रहा है। और हम क्या कहते हैं, बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप अपने तन मन धन से अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाबा ऊपर से स्वर्ग नहीं बना रहा है, ऊपर से भेजेगा, आप अपने इस तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने लिए ही, अपने कर्मों से भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अपने अपने ही है, हमारे कर्मों से ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए शिक्षा ज्ञान है, अपने पर बार बार यूज करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, एडजस्ट सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ पता है, अपना है भाई है, उसको समझ में नहीं आता है, गलत, आप बताओ ऐसे क्यों बैठे हो, आपको ठीक नहीं लगा लेकिन उसको ठीक लग रहा है, उसके अनुसार वो सही है, आपके अनुसार सही नहीं है, है ना। तो उस वो जो कह रहा गलत नहीं, ये समझ करके ड्रामा में हर एक का पार्ट, तब का साम दंड और भेद। एक दफा समझाओ, अगर दंड इधर यूज नहीं होता है, यहां ब्रह्मा कुमार बनने के बाद एक दफा दो दफा समझाओ, छोड़ दो, वो जाने अपना कर्म जाने, उसको कहते हैं लेट गो। कहना सहज है लेकिन ये जीवन में आज उपयोग करने का तरीका है। शिक्षा बच्चों को भी कब बताना है, परिपति को भी, परिवार में भी ज्ञान है, अपने को यूज करना है, नहीं तो अपना हिसाब किताब बनाते जाओ। 5000 साल के लिए, तो संगम पर का शूटिंग भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। ज्ञान और योग का प्रयोग अपने ऊपर करते हो तो अपने को अपने झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, किसके लिए, किसके लिए, अपने लिए ही सहन करना है। हाँ अन्याय भी करते, बाबा ने कहा अन्याय भी होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप पूछेंगे, बताओ देखो महाभारत सुनते हो, पढ़ा हुआ भी है, देखो सारे इंद्र सभा में भीष्म पितामह सारे परिवार वालों के बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है दुशासन, किसी परिवार वालों ने उठकर द्रौपदी को मदद किया, किसी परिवार वालों ने उठकर दुशासन को रोका, नहीं उठना चाहता, चलो द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, भगवान को याद किया, भगवान भी आया, द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन तुम चुप रहो, उसको रोका। इससे समझ लेना है, इस कहानी सुनने के लिए, अपने जीवन में, हमारे जीवन में भी अन्याय अत्याचार बहुत कुछ होगा, उसका बाबा ने कहा था आज, उसका भी पाप का घड़ा भरना है, उसका भी घड़ा भरना है, समझा। आप उस आपको शक्ति देता है, आप सहन करो, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता, इनको ठीक करो पहले, इनको चुप पहले करो, इनको परिवर्तन करो, नहीं उनका पाप का घड़ा भरना है। क्यों, बाबा ने कहा दास दासी भी चाहिए, आपको मदद किया, देखो द्रौपदी ने बोला आप अगर बाबा को याद करते हो आपको मदद करता है ना, उसको मदद किया और उसका पाप का घड़ा भरना है। भगवान रोकेगा नहीं, किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है, हर एक को स्वतंत्रता है, अच्छा करो या गलत करो, तो ये समझ देता है। ये कर्म क्षेत्र के अंदर, वर्तमान समय के अंदर ज्ञान समझने के बाद बहुत कुछ अन्याय, बहुत कुछ होता है, सहन कर, क्यों पता नहीं किसका किसके साथ कभी हिसाब किताब था, हम हिसाब किताब करके छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ करके और पुरुषार्थ चाहिए, उसको मिटाना भी है और उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, समझना, क्यों सारे कल्प का आधार है। इसलिए क्या चाहिए, दो ही लक्ष्य, जो आप कह रहे थे एक ही उपाय मुख से नहीं, बाबा ने कहा एक ही तरीका है, योग बल है, शुभ भावना है, शुभ भावना भी देने की विधि चाहिए। क्या होता है भाई जी को, मैं जानता हूं बहुत दुख देता है ये, जब भी दिखाई देता मेरे मन में इनके लिए चलेगा ना, अरे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा करता आएगा ना, और योग में बैठ करके बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, पहुंचेंगी, कोई मिला तो इनका परिचय क्या बताता हूँ, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा बताता हूँ, और योग में बैठ के शुभ भावना देंगे तो पहुंचेंगी, ये भी चाहिए। तब बाबा समझ कर कि ये कौन, हाँ इसका संग ठीक नहीं, इसका हिसाब किताब ठीक नहीं, इसका पार ठीक नहीं, लेकिन ये आत्मा ठीक है, ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये समझ समझ करके दुआएं देना है, शुभ भावना तब पहुंचती है। अगर अंदर गलत भावना है तो शुभ भावना भी पहुंचती नहीं है, उसकी भी विधि चाहिए। शुभ भावना भी कब पहुंचती है, मन की स्वच्छता चाहिए, ठीक है। तो ये धन शिक्षा देना कब चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, बहुत कुछ जानते हुए भी, समझते हुए, दिखाई देते हुए भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि कर्मों की गति मेरे से अभी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अभी जो कुछ हो रहा है वो सारे कल्प का आधार है। अब थोड़े समय के लिए सर, इसलिए बाबा ने इसके पहले मुरली में बहुत अच्छे सुंदर एक शब्द यूज किया था, बच्चे अभी मौज करेंगे फल खाके, लेकिन उस फल के साथ कांटे हैं, उल्टा लटकना पड़ेगा, अभी कुछ गलत, किसी को पाठ पढ़ा के, किसी को कुछ करके गलत करके जीत लेंगे, प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, वो फल खाएंगे, लेकिन उस फल के साथ पता है मैंने कुछ चतुराई करके किया है, उसको पता है उस फल के साथ कांटे हैं, वो अल्प काल के लिए फल दिखाई देगा, लेकिन सारे अतीन्द्रिय सुख थोड़े समय के लिए नहीं, सारे कल्प के लिए। तो वो दुरानदेशी जिसके पास है वही समझ सकता है। तब यह क्या आध्यात्मिक पढ़ाई है, थोड़े समय के लिए नहीं, सारे कल्प का आधार है, सारे कल्प को देखते हुए थोड़े समय के लिए सहन करना पड़ता है, और सहन वही करता है जिसके पास ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए। मंजूर, ठीक है। ज्ञान कैसे सुनना चाहिए, सिर्फ योग में ऐसे बैठे योग के ऐसे नहीं, अभी नए नए हो, पुराने हो, समझ है थोड़ा तो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और बहुत मेहनत थी इसके अंदर, बाबा ने सहज तरीका करके बताया, विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तो शक्ति मिलती है। बहुत सारी मुरली याद रखना चाहिए, नहीं, एक रोज भगवान के एक बूंद के प्यासे, आज सारे मुरलियों से एक मुरली के पॉइंट ले लो, उसको याद रखो, उसको बार बार अपने को पढ़ाओ, 24 घंटे कर्म करो, सब कुछ करो, तो एक पॉइंट रखने के लिए तो कोई तकलीफ है, ठीक है। ओम शांति। अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्रोध मुक्त की बढ़ना चाहिए ना, मेंबर बढ़ना चाहिए, अभी तो 2-3 लोग ही है सत्युग में जाने वाले, हाँ थोड़ा अंश रहेगा तो भी नहीं पहुंचेगा ना, अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डबल बनेंगे ना।
बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ भाई का, कैसे ब्राह्मण जीवन में बढ़ना है ये भी हमें समझ चाहिए, बातें तो बहुत आएंगी, और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब बात नहीं आती, ऐसा ही है ना, और हमें कैसे रहना है ये कला हमें जरूर सीखनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ भाई का। और अब हम करेंगे बाबा को याद 2 मिनट।